अब अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 आपको सुनाना चाह रहा हूं। सह माने उसी बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम शतान पर आश्रय आश्रय अष्टंगी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। तस्य माने यही उसका ये समझो। तस्य माने उसी सम्राट माने राजा धीराज बृहस्पति जगत गुरु देवता परमेश्वर है। यही तस्य माने वही ये वो परमेश्वर है जगत वही राजा धीराज यानी कुल मालिक सम्राट बृहस्पति माने जगत गुरु देवता माने परमेश्वर है। कौन यत माने जिससे अह माने सबका वियोग हुआ जिस जो वहां से बिछुड़ कर आए है ना हम सभी ये वो परमेश्वर है। अथ माने इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल ब्रह्म के शुक्रम माने वीर्य अर्थात बीज शक्ति से धनिष्ठ माने उत्पन्न होकर ये जीव आत्मा विप्रा माने भक्त आत्मा वी माने अलग से धुमंतु माने मृतलोक और स्वर्गलोक में धुमंतु का अर्थ है मृतलोक और स्वर्गलोकों में वसंतो निवास करने लगी अर्थात काल ने कहा कि तुम यहाँ निवास करो। कितना स्पष्ट कर दिया कि उसी परमात्मा से ये पहले बता दिया ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ पूर्ण परमात्मा तक काल। ये आपको कबीर साहब की वाणी भी ही बता रही है कि पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। पहले काल भगवान उत्पन्न किया अंडे में सर्व शक्ति थे और पीछे दिया उस आत्मा का जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल ब्रह्म के साथ जाने की और दोनों हाथ जोड़ के कि मैं जाना चाहता हूँ उसका सबसे पहले स्वीकृति देने वाली आत्मा का लड़की बनाया था अष्टंगी बनाया था और वही परमात्मा है ये जिससे सबका योग वियोग हुआ है जो सारी सृष्टि का रचनहार जगत पिता जगत गुरु देव बंधु यानी ये लिखा आगे। फिर छठे में कमाल किया कि वही परमात्मा सत भक्ति करने वाले को सतलोक गच्छात्मा ने ले जाता है। नूनम माने निसंदेह तत् माने वह पूर्ण परमेश्वर ही अस्य माने इस काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक काव्य का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल साधक भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस मह माने सर्वशक्तिमान देवस्य माने परमेश्वर के पूर्वश माने पहले वाले धाम माने लोक में ये धाम जो ये संस्कृत बोल रहा हूं मैं मह माने सर्वशक्तिमान देवस्य माने परमेश्वर के पूर्वश ये संस्कृत है मैंने पूर्वश माने पहले के धाम माने लोक में सतलोक में हिनोती माने भेज देता है। वही परमात्मा उस शास्त्र अनुकूल साधक को जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता है उसको सतलोक भेज देता है। पूर्व माने पहले वाले विषयते माने चाहे हुए उस जिस परमात्मा की सब तलाश है सब ढूंढ रहे उस ईश्वर को उस परमात्मा को चाहे हुए विषयते माने बहुत अच्छे ढंग से जिसकी तलाश है सबको ऐसे माने इस परमेश्वर को वह पहले वाले यानी सबसे पहले वाले भगवान जिसकी सबको तलाश है उसको इस वाले इस परमेश्वर को वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जान के यानी वहां जाने के बाद तो मैं सब पता लग जाएगा हम कैसे फंसे थे काल के जाल में। बहुत आनंद साकम माने के साथ अर्धे माने आधा ससन माने सोता हुआ इतथ्य माने विधिवत इस प्रकार नु माने सतुति करता है। बहुत प्यार से आधा सो आधा जागा कति निश्चिंत हो जाए जिसने कोई चिंता कोई फिक्र नहीं रहे और बहुत दुख से निकल कर फिर शांति तक सोया करे उस समय वो प्रभु की ऐसे सतुति करता है। कैसे गरीबदास जी इसका प्रमाण देते हैं क्योंकि गरीबदास जी को भी कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक लेकर गए थे। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आने जल के बिंब अगाध गति ही सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गया उस लोक में सतलोक में ले गया हमको यानी मुझे कबीर परमेश्वर आके और वहां तक जाकर देखा वो आनंद वहां का शोभा हम तो चादर तान के सो गए। चादर तान के सोना निश्चिंत हो जाना, कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं। ये अथर्वेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का मैं श्लोक नंबर 6 आपको सुनाया। अब 7 में मैं कमाल कर दिया, निचोड़ कर दिया, सार दे दिया। अब जो इसमें के बताया कि जो मैंने पहले वर्णन किया है ना, जो अविनाशी अचल जगत बंधु सारी सृष्टि का रचनहार जगत गुरु और सारी सृष्टि का रचनहार, वो है कौन? इसमें स्पष्ट कर दिया वो कबीर परमेश्वर है। क्या कहा? ये माने जो अथर्वण माने अचल अर्थात अविनाशी, पितरम माने जगत पिता, देव बंधु माने भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, बृहस्पति माने जगत गुरु, जय माने तथा, नमसा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव माने सुरक्षा के साथ, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला कौन है, और विश्वेशाम सारे इस ब्रह्मंडों को दनिता माने रचने वाला, न दबाता काल की तरह धोखा न देने वाला, वो है कौन? सावधान माने स्वभाव वाला, गुणों वाला, यथा वो कौन है? यथा माने ज्योका तू अर्थात वैसा ही, स माने वह, तवम माने आप, कबीर देव वो कबीर परमेश्वर है। देखो सह तवम कबीर देव है, एक पुस्तक तैयार हो रही है परिभाषा प्रभु की, इसकी प्रकाशन हो रही है, अब ये आपके पास आएगी प्रभु की रजा रही तो, इसमें आपको बिल्कुल निर्णायक ज्ञान मिलेगा। यहाँ देखना ये अनुवाक नंबर 1 4 का कांड नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 है, मंत्र ये देखना, इसमें स्पष्ट है, ये अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतम नमसा अवचय गच्छात तमाम विश्वेशाम जनिता सह यथा सह कबीर देव है, ये वह कबीर परमात्मा है, न दबायत स्वाधावान, किस दबायतवान धोखा न देने वाले, स्वाधावान माने गुण वाला। अब देखो वह स्वयं ही, यह माने जो अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी तथा आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, नमसा माने विनम्र पुजारी तथा चय माने तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव माने सुरक्षा के साथ, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशम सर्वब्रह्मंडों को, जनिता माने रचने वाला, न दबायता काल की तरह धोखा न देने वाला, सौदावान माने स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने जौका तू अर्थात वैसा ही, सह माने वह, तो माने आप, कबीर देव है, इसको ऐसे लिख दे तो भी और ऐसे लिख दे तो भी वो, और ऐसे लिख दे तो भी वो कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी भक्त समाज इसको अपनी मान मर्यादा को भूल के, अपने आप को एक भक्त जान के, और इस दास को अपना दास जान के, और मैं तो इन महापुरुषों के संतों के जूतों के नीचे की जो कण रज होती है वो धूल समझना मुझे, दास का कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। मान अभिमान तो जब हो, जब अपना हमारा कोई ज्ञान हो, ये तो शास्त्र प्रभु कहते हैं, उसी की पुस्तकों को पढ़कर हमें ज्ञान हुआ और हम उसके फिर पंसारी बन बैठे, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं ज्यादा जानता हूँ, वो कम जानता है, कोई बात हुई, लिखा हुआ है ठीक है, पढ़ने में नहीं आया वो बात दूसरी रही, अब फिर देख लेंगे इनको और मिलकर एक फैसला दे देंगे समाज को, ये सदा आभारी रहेंगे आपके। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पीछे बनी सो बनी कोई बात नहीं, हम भी ऐसे अंधे थे, लग रहे थे हनुमान के पीछे, हनुमान जी की पूजा क्यों करता, श्याम जी की पूजा करता था, मंगलवार के व्रत रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मानता था, जैसे गुरु जी मिले थे, और जिस दिन से पता लगा उतने उन्हीं से किनारा कर दिया, और उन गुरुओं ने भी अब उस मर्यादा को समझना पड़ा, और जब पूर्ण गुरु मिले हमने उनका आसरा ले लिया, ऐसे ही अब करना होगा और ताकि ये जीव सुलझ सके। इस प्रकार कबीर साहब उन दोनों मजहबों को, धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को मगर में समझा रहे हैं। 3-4 दिन साहब वहां पर रुके, कबीर परमेश्वर पहले दिन सत्संग सुनावे, सब प्रसन्न होकर एक होकर जावे, वहां जाकर के उनके जो गुरु लोग थे जिनकी रोजी रोटी समाप्त हुई थी और उनकी बेइज्जती हुई थी कि तो सच्चाई बता रहा है, वो कहते हैं वैसे ही कह रहा है, उसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसको क्या पता, ये तो गंवार है, अनपढ़ है। अब चक्कर क्या है, ये भोली आत्मा उन नकली गुरुओं के साथ तो ज्यादा रहते हैं और सत बताने वाले का संपर्क उनका कम होता है, इसलिए वो अधूरे गुरु उनको ज्यादा आधारित रखते हैं। बिजली खां पठान ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, दाता वैसे तो आप कहोगे हमने स्वीकार्य ही होगा, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने कितना संघर्ष किया है इस सत मार्ग को प्रशस्त करने में, और उन्होंने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सत बताया है। और बताया कि हजरत मोहम्मद जी को तो स्वयं अल्लाह मिले थे, यानी अल्लाह के फरिश्ते आए थे और ऊपर लेकर गए थे। कबीर साहब ने कहा, प्यारी आत्माओं, उस पुण्य आत्मा, उस पाक आत्मा हजरत मोहम्मद को ये काल के दूत मिले थे, जबराइल जैसे देवता फरिश्ते, और इन्होंने अब उसी काल के द्वारा दिया गया संदेश उन तक पहुंचा दिया, और ये प्यारी आत्मा उनको परमात्मा मानकर स्वीकार कर लिया। एक बात बताओ, परमात्मा की भक्ति किस लिए करते हैं, कि घर में सुख रख। जी हाँ, आज तुम कितने दुखी थे, और हिंदू और मुसलमान अपने आधार पर साधना कर भी रहे थे, क्या तुम्हें ये वर्षा हुई नहीं हुई, अब क्यों हुई, ये तो आपकी रजा है, तो मैं क्या हूँ, मैं इससे सिद्ध हुआ कि मैं तुम्हारी जो तुम साधन जिस परमात्मा पर आधारित हो हिंदू और मुसलमान, तो उससे मैं समर्थ हुआ, तब तो सब स्वीकार करें, तो मैं उससे तगड़ा हुआ, क्योंकि आपके ब्राह्मण लोग कहते थे कि अभी संयोग नहीं है, हिंदू समाज के बता रहे थे वो महात्मा जी जैसे गोरखनाथ जी भी, और ब्राह्मण लोग भी कहा करते पत्रे देख कर कि भाई अभी तो 3 वर्ष तो वर्षा का संयोग ही नहीं है, अर्थात आपके भगवान तो नहीं कर सके, और इसने कर दिया दास ने, तो मैं आपके उन भगवानों से समर्थ का साधक हूँ, अपने आप को थोड़ा सा छुपा के, तो हम क्यों ना उसी की समर्थता स्वीकार करें। अब देखिएगा, हजरत मोहम्मद जी का ये जीवन चरित्र है, हजरत मोहम्मद जी का जीवन जीवनी, हजरत मोहम्मद और ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिएगा ऊपर, इस नाम साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है, नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, इस्लामी साहित्य प्रकाशन, प्रकाशक है मर्जकी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, दावत नगर अब्दुल फजल इनक्लेव, अभी जामिया नगर नई दिल्ली, यहां से प्रकाशित है, और मुद्रक है इसका दावत ऑफसेट प्रिंटर्स। इसमें स्पष्ट लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी, अभी दिखाऊंगा आपको, हजरत मोहम्मद जी की आयु 25 वर्ष की हो गई थी, तब तक शादी नहीं हुई पाई, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी के पिताजी जब ये हजरत मोहम्मद मां के गर्भ में थे, आमिना देवी के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु होगी, अब ये विचार करना, यतीम की तरह तो उनकी परवरिश हुई, मां पिताजी के मुख नहीं देखा हजरत मोहम्मद जी ने, और अब यही जीवनी हजरत मोहम्मद मैं आपको दिखाता हूं कि हजरत मोहम्मद जी जब मां के पेट में थे उसी समय इनकी मृत्यु होगी। हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी श्री अब्दुल्लाह थे। इनके पूज्य दादाजी का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। ये देखिए इनके प्रश्न नंबर 28 पे लिखा है, अब्दुल्लाह के का इंतकाल हुआ तो आमनी गर्भवती थी। अब्दुल्लाह हजरत मोहम्मद जी के पिताजी जब शरीर छोड़ के गए, हजरत मोहम्मद जी के पिताजी, उस समय आमीना गर्भवती थी, अर्थात हजरत मोहम्मद मां के पेट में थे, पिता के तो दर्शन भी नहीं किए। और फिर यहां देखिए 29 नंबर पे, दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाह, दाइयों ने सुना कि मोहम्मद यतीम है, बाप के साये से सदा महरूम है, अर्थात यतीम की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। और फिर एक खजीदा नाम की औरत से इनकी शादी हुई। पहले देखिए और दुखदायी खबर हजरत मोहम्मद के बारे में। हजरत मोहम्मद जी उसमें 6 वर्ष के थे जब उनकी मां की मृत्यु होगी, आमीना की। वे 6 साल के हो गए तो मां का जी चाहा कि चलकर सोहर यानी अब्दुल्लाह की कब्र देखें, क्योंकि अब्दुल्लाह रास्ते में मर गए थे। वो भी उनके घर से बहुत दूर उनकी कब्र बना रखी थी, वहीं पर अंतिम संस्कार किया था। नीचे देखिए, सोहर की तरह आमनी भी रस्ते में मर गई, अपने पति की कब्र देखने गई थी। 6 साल के साथ में ये हजरत मोहम्मद जी थे, तो वहां पर हजफा से 23 मील पर एक गांव है अबबा, वहां पहुंची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल न सकी, उनके प्राण पखेड़ू उड़ गए और वहीं उनकी कब्र बनी। अब्दुल्लाह का इंतकाल भी तो प्रदेश में हुआ था, यानी अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद जी के पिताजी और माताजी का घर से बाहर ही ठिकाने पर तो मृत्यु भी ना हुई, रस्ते में ये हुई। अब आप यतीम थे, बाप के साये से मरहूम थे, अभी इस यतीमी का एहसास और ज्यादा हो गया। पहले तो यतीम हुए, फिर माँ भी मर गई, मुताकाल ने के जुल्म कर रखा हमारे साथ है मालिक, और माँ भी चल बसी। और उसके बाद फिर ये 25 साल के हो गए जब इनकी शादी एक खदीजा नाम की 40 वर्षीय औरत से हुई, वो भी बताएं विधवा थी। उसमें आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी, तो और बीबी खदीजा 40 साल की थी, ये विधवा थी। और उससे शादी, क्यों गरीब आदमी था, माता पिता थे कोई ना, शादी की। लेकिन पुण्य आत्मा बहुत थी, पिछले संस्कार बहुत तगड़े थे हजरत मोहम्मद जी के। अब इस प्रकार ये प्यारी आत्मा शिव के लोक से एक बहुत अच्छी आत्मा आई थी, बहुत पिछले संस्कार भक्ति के बहुत अच्छे थे। खदीजा से शादी के बाद हजरत मोहम्मद जी अपने पिछले संस्कारों वश वो उनकी भक्ति उनको बहुत प्रेरणा देती थी, दबाव देती थी, और रह रहकर उस प्रभु की तलाश में वो लगे रहते थे। और उसी कसक के आधार पर गुफाओं में बैठकर एकांत सुतान पर स्वयं भजन किया करते थे, भक्ति करते थे। एक दिन वो गुफा में बैठे थे, वहां पर एक फरिश्ता आया और उनको जबरदस्ती ऐसा था उसका कोई गला घोट रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा, जैसे गला घोट रहा हो, और कहता है कि बोल अब पढ़ तू। उनका श्वास जो है घुट गया और बड़ा घबरा गए। अब देखो रमजान के वो रोजे चल रहे थे, रमजान के दिन थे, यही वो हजरत मोहम्मद की जीवनी जी की जीवनी। और ये प्रश्न नंबर इसके यहाँ देखिएगा, ये ऊपर प्रश्न नंबर है 68 पे, यहाँ लिखा है, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे, सुबह का सुहाना समय था, अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, ये सामने आया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सलल यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। آپ صلی اللہ حضرت محمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور شریر کو بھیچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. فرمایا آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اب دیکھو اس پرکار یہ کال کے دوت آتے ہیں، ان پیاری آتماؤں کو ایسے نچاتے ہیں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا، اس نے تو گھبرا کر وہ باہر چلے گئے، اپنی پتنی کسے بتایا خزیدہ سے ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا. وہ فرشتہ پھر آیا، آواز آئی اوپر سے، اچانک ایک آواز آئی محمد، آپ حضرت محمد چوک پڑے، گھبرا گئے. دیکھ ڈرا ڈرو کے ان بولی آتماؤں کو ایک کال کیسے نچا رہا پیاری اے مالک. اور گھبرا کر اوپر سر اوپر اٹھا دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا ہے. وہ پکار کر کہہ رہا تھا محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. یہ جبرائیل دیوتا، یہ کال کا بھیجا ہوا آتا، میں جبریل ہوں. آپ کی گھبراہٹ اور بڑی، ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھے سے قدم رک گئے، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف کی یہ صورت آنکھوں سے اوجل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی دکھائی دیتا، جدھر منہ کرتے ادھر ہی وہی دکھائی دیتا موجود ہوتا. آگے بڑھیں تو پیچھے ہٹیں، یا پیچھے ہٹیں نظر نیچے کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف یہ کال کا دیوتا یہ فرشتہ دکھائی دیا، ہر طرف ہر جگہ وہی فرشتہ دکھائی دیتا گیا. اب دیکھو پھر فرشتہ چلا گیا، آپ صلی اللہ خزیدہ کے پاس آئے، بھے سے کانپتے ہوئے اور پسینے سے ڈوبے ہوئے، آتے ہی فرمایا کہ مجھے کچھ اڑا دو. ترنت بی بی خزیدہ نے چادر اڑا دی. اب نیچے دیکھو اس طرح یہ کال ان کو سب بھولی آتماؤں کو نچا رہا ہے. اس پرکار یہ کال ان پیاری آتماؤں کو کبیر پرمیشور کے سوئم آنے سے یا ان کے ست مارگ درشک کے آنے سے پہلے ہی ان پنیہ آتماؤں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اور زبردستی اپنے گیان میں ان کو مجبور کر دیتا ہے. جیسے اس پیاری آتما حضرت محمد کے ساتھ کیسا بد سلوک ان فرشتوں نے کیا. اب دیکھیے اب اسی جیونی حضرت محمد کے پرشن نمبر 74 سے آپ پھر دیکھیے کیا لکھا ہے. کیونکہ ان کی تمنا اور آرزو پوری ہوگی، وہ کا انتظار تھا، وہ پھر آ گئی. اس کے بعد کئی بار وہ آئی، حضرت جبریل آتے رہے اور پیغام سناتے رہے. ابکال کا سندیشہ لے لے کہیں گیا اور وہ سارا کا سارا نوٹ کر دیا گیا. یہ دیکھیے اب حضرت جبریل نے بتایا کس پرکار وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں. ایک دن آپ حضرت محمد صلی اللہ مکے کے اوپری علاقے میں تھے، حضرت جبریل نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھنا ہو تو اس طرح پاک صاف ہو. پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی. اس کے بعد جبریل چلے گئے اور پھر یہ جبریل ان کو اوپر لے گیا، نو جانے کہاں کہاں دکھایا. تو اس پرکار اس پیاری آتما نے جو بھی اس کال نے اور کال کے فرشتوں نے جو بھی گیان دیا ست مان کر آرود ہو گئے، نہ ماننا تو یہ زبردستی کروا لے. جیسے ارجن کو اسی بھینکر روپ دکھایا، سب کو ماروں گا اور سارا کام پر ارجن ڈرتے نہ برلی جو آپ کہتے ہو ستیہ ہے، اب کیا کریے. تو ایسے بھی تو کر دیتا ان پیاری آتماؤں کے ساتھ. اب میرا جو کہنے کا بھاو یہ تھا کہ کبیر صاحب ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو سبھی مذہب آج کے دن جس سادھنا کو کر رہے ہیں وہ کال سادھنا ہے اور کال اس جیو کو سکھی نہیں ہونے دیتا. آپ دیکھو حضرت محمد جی کی ہی جیون کو دیکھ لیجئے اور جب ایسی پیاری آتما پنیہ آتما بھکتی یکتان آتما کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے تو انے اس کے انیائی کتنے سکھی ہو سکتے ہیں. اسی میں لکھا ہے کہ حضرت محمد کے 7 سنتان ہوئی، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے. جیونی حضرت محمد پرشن نمبر 64 64 پہ یہ دیکھیے. हे परमात्मा। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। चार लड़के और तीन लड़कियां हो गई थी, खुशी और मनाई थी। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए। कासिम, तैयब और ताहिर, ये तीन पुत्र थे, सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप शबर करते रहे। और क्या करे, काल में बांध रखा बेचारों को। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो मां मरगी और फिर जिगर के टुकड़े का गम सहन करना पड़ा। अब भक्त आत्माओं, ये स्वयं विचार करो कि हम कैसे सुखी हो सके जो इतने पुण्यात्मा दिन रात भक्ति किया करते थे, प्रभु को याद करते थे, पिछले शुभ कर्म भी उनके साथ थे और हजरत मोहम्मद जैसे महापुरुष के साथ भी, उनके बेटे उनकी आंखें आगे मर जाए। जिस बाप के तीन बेटे हों और तीनों मर जाए, फिर भक्ति करके दिखाओ, वो देखा भी कोई ना उसकी तरफ, क्या भगवान है। तो कहने का भाव ये है कि पहले हमें ऐसा प्रभु चाहिए जो हमारे ऐसे समय में हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे, हमारे धन में वृद्धि हो, हमारा भविष्य ठीक बने। और फिर हजरत मोहम्मद जी ने की पत्नी खजीदा भी मर गई, बेटे भी मर गए, फिर वह पत्नी खजीदा भी मर गई और फिर इन्होंने पांच छह शादियां और कराई। एक जगह लिखा 10 शादियां, एक जगह लिखा 5 शादी और कराई और फिर 63 साल की उम्र में स्वयं मर गए। देखेंगे कि हजरत मोहम्मद जी का बीच में बहुत संघर्ष हुआ, इस अपना जो ज्ञान हुआ था उनको इन देवताओं से, उसको सत्य मान करके इस महापुरुष ने बहुत संघर्ष किया और फिर 63 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, कुल 63 साल की उम्र में। अब देखो ये वही पुस्तक है, इसके यहां देखिएगा, ये अंतिम उनकी आवाज थी और आदेश था इस्लाम धर्म को, प्यारी आत्माओं को। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी सलल हजरत मोहम्मद को सलल सल्लल्लाह हज कहते हैं, हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1,00,000 से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो चुके थे जब इनका शरीर अंत हुआ। इस हज को कहते हैं, इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जिरात का मौका नहीं मिला। कुछ लोग इस हज को कहते हैं हिजतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने वाला सल्लल्लाह दुनिया में आए थे वह वहां पूरा हो गया, यहाँ पूरा हो गया। वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी दी। वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। शुरू करते हुए आप यानी हजरत मोहम्मद जी के ये आदेश से ध्यान से सुनना पढ़ना है। ने फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ कहूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूँ। इसके बाद आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह ने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयतें दी कि इन वसीयतों का निचोड़ यह है कि अल्लाह की किताब और उनके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना। देखियो कमाल की बात, नीचे कोई अपमान अमानत रखे तो उसमें ख्यानत न करना और खून खराबे और ब्याज के करीब न फटकना। जो महापुरुष खून खराबा करने तो मना करे, क्या वो मांस खाने की अलाउ करेगा? कभी नहीं, इन्होंने मांस नहीं खाया हजरत मोहम्मद जी ने। और ब्याज भी मना करे जो, तो बताओ वो कहेगा कि तुम बकरे खाओ और ऐसा करो वैसा करो? ये सिर्फ बाद में इन जीव के चठोरों ने, इन काजी और मुल्लाओं ने, और साथ में ये किसी में प्रवेश करके ये प्रेत आत्मा, ये फरिश्ते और ड्रा ड्रू को कहते हैं, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तुम ऐसे लोग बोलो, इन बोली आत्माओं ने डरा डरू कर ये आगे गलत आदेश दे देते हैं। अब यहाँ बात विशेष विचारनी है। गरीबदास जी कहते हैं कि अरस कुरस पर अलह तकत है और खालिक बिन नी खाली वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ये हजरत मोहम्मद जी जैसे महापुरुष जितने भी उससे पहले पैगंबर आए हैं वो बहुत पुण्य आत्मा थी। और फिर कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये तो पुण्य आत्मा आदरणीय थी। और राम रसूल कहाया, एक लाख अस्सी को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के सीधे मुसलमान अनुयायी थे, उनको कसम है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उन्होंने बेचारों ने, गरीबदास जी कहते हैं कि उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाया, कभी मांस नहीं खाया। और फिर क्या बताया कि अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नी खाली वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो नेक आत्मा थी प्रभु के कृपा पात्र। ये जुल्म त्याग दो और उस परमात्मा की भक्ति करो जो पूर्ण सुखदाई। ये काल तो ऐसे चक्कर में डाले रखेगा जैसे हजरत मोहम्मद जी का जीवन सारा पढ़ ले इंसान आंखों से आंसू नहीं सुखाए। हम पढ़ते हैं ये सोचकर वो तो महान थे, उनको कष्ट नहीं हुआ होगा, हुआ जीवा कष्ट नहीं हुआ करे, काल ने सबको नचा रखा है। अब मेरे सामने मेरे तीनों पुत्र मर जाते, मैं सपने में भगवान याद नहीं करता, ऐसे अल्लाह ने कौन याद करे, क्योंकि ये काल सबको खाता है, अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाओगा। माया आदि निरंजन भाई ही अपने जाए आप खाई, ये तो अपना ना आप खावे और उसी की हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर ने उनको समझा, सभी के सभी हिंदू और मुसलमान एक हो गए। कबीर साहब ने कहा हिंदू तो हिंदू बन जाओ और मुसलमान मुसलमान बनो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू बिल्कुल मत छूना, ठीक है नमाज करो और तुम गीता पढ़ो, लेकिन नाम वो जपो जो योद्धास मैं बताऊं। ऐसे उस समय के जो जितने हिंदू और मुसलमान थे बिल्कुल श्रेष्ठ आत्मा अपने सब बुराइयों को त्याग कर नाम जपन लग गई। आने वाले समय 600 साल हो गए उनको, 550 वर्ष हो गए, अब फिर वो बुराइयां क्योंकि नकली गुरु फिर चालू कर देते हैं, वहीं के वहीं फिर आ जाते हैं। इस प्रकार कबीर साहब ने वहां समझा। फिर एक कहने लगा जी हमारे कोई संतान ही दाता दया करो, आशीर्वाद दे दिया उनका संतान होगी। अब वहां पर उस मगर नगर में एक पूरा मोहल्ला बना हुआ है, उसका नाम लिखा है मोहल्ला कबीर करम। कबीर करम माने कबीर की कृपा से बसा हुआ वो मोहल्ला, पूरा मोहल्ला बना हुआ है। बताते हैं कि हमारे दादा जो थे वो 7वें 8वें 14 15 पहले जो स्पीडी दादा था, जिसके संतान नहीं थी, जो सतगुरु के चरणों में आया था, उसके उसकी आयु लगभग 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी, दोनों की कोई संतान नहीं थी, पर आशीर्वाद देते 10वें महीने पुत्र हुआ था। और फिर ऐसे 2-3 पुत्र हुए और उससे फिर ये सतगुरु कबीर साहब का की रजा से वो उनका मोहल्ला बना। अब ये प्रसंग चल रहा है कि कबीर साहब की समर्थता का, कि जैसा श्री कृष्ण भगवान ने राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया क्योंकि उनकी आयु बकाया थी, इसलिए उनको जीवित कर सकते हैं। ऐसे मरे हुए को, कटे हुए टुकड़ों को एक सेकंड में ये भगवान जोड़ सकते हैं यदि उनकी आयु बकाया है तो। जैसे उन्हीं के सगे भांजे अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सामने चक्रव्यूह में, महाभारत के युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, शुभद्रा रो रही है, सारे पांडव रो रहे हैं, पांडवों का कुल विनाश हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा कुल विनाश हो गया, वो कोई रक्षा नहीं कर सके क्योंकि ये कालाधीन है, इस काल के यानी इस ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, उसके रसूल बनकर आते हैं, दूत बनकर आते हैं, इनको भी दुखी करता है, इनको भी नचाता रहता है। जैसे हजरत मोहम्मद ईसा मसीह जैसे कि क्या हालत हो के अंत में کتنا دکھ دیا ان کو، ایسی یہ کال نہیں بخشتا. کبیر پرمیشور ہماری آیو بڑھا سکتے ہیں، یدی ہماری آیو سماپت ہو چکی ہے تو بھی بڑھا سکتے ہیں. اب آپ کو دو تین پرمان دوں گا، تین چار پرمان. کچھ تو دو تو ایسے ہوں گے جو مردے کافی دن کے تھے، ان کو دوبارہ جیوت کیا، ان کی آیو نہیں تھی. اور کچھ اسی کے پیرلل ایکویلنٹ دوں گا، برابر دوں گا، تاکہ یہ پربھو اتنا بھی کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. پردھان منتری مکھیہ منتری والی راحت بھی دے سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، ایسے سمجھنا. ایک بار سکندر لودھی کو جلن کا روگ ہو گیا، اتنا بھینکر جلن کا روگ ہوا کہ سب جگہ علاج کروایا، سب جنتر منتر کروائے، ہندو مسلم سنتوں سے بھی پرارتھنا کی، مسلمان قاضی اور ملا اور شیخ تک کی پیر نے بھی اپنے جنتر منتر سارے کر لیے، لیکن دلی کے بادشاہ سکندر لودھی کا جلن کا روگ نہیں سماپت ہوا. جلن کا روگ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کسی کا ہاتھ پر اگنی میں جل جا اور اس میں اتنی بھینکر پیڑا ہویا کرے، اسہنیے اتنا درد ہو، ایسے ہی وہ جلن کا روگ جو ہوتا ہے اس میں جلا دکھائی نہیں دیتا، جلتا نہیں، پر جلن اتنی ہی ہوتی ہے جتنا جلے ہوئے میں ہوتی ہے، اور سارا شریر تڑپ دشکرموں کے کارن، کیونکہ کرم سے دکھ کرم سے سکھ ہوتا ہے. انت میں وہ مرتو کی گھڑیاں گڑے اور دن رات روئے. کسی نے بتا دیا کہ کانسی میں کبیر نام کے مہان آتما پرمیشور تل لائے ہوئے ہیں، اگر وہ میر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاوے. سکندر لودھی نے وہاں چلنے کا تیاری کی، کاشی میں بنارس کی طرف، اور پہلے گھڑ سوار دوت بھیج دیے کہ کاشی نریش بیر دیو سنگھ بگھیل سے کہو کہ راجہ بادشاہ آ رہے ہیں. اب وہ سبھی نواب، سبھی راجہ، چھوٹے چھوٹے راجہ دلی کے بادشاہ کے انترگت آتے تھے. اسی سمے بیر دیو سنگھ بگھیل نے پوری ویوستھا اپنے ریسٹ ہاؤس میں کر دی، خوب سجا دجا دیا، ہاتھی پر بیٹھ کر سکندر لودھی وہاں کئی دنوں میں پہنچا. جاتے ہی راجہ سکندر لودھی کے کھانے کی، چا پانی، جلپان کی تیاری کی. میز کے اوپر کے نانا پرکار کے کاجو، دودھ، کشمش، جوس، سرپ پر فروٹ سب رکھ دیے، اور سکندر لودھی مایوس ہوا بیٹھا ہے. بیر دیو سنگھ بگھیل پرارتھنا کرتے پرودیگار، بھوجن پاؤ، ناشتہ کرو، داتا جلپان کرو، بھوجن پاؤ. سکندر نے کہا بیر سنگھ، بھائی میں کچھ نہیں کھا سکتا، میری تو بہت بری حالت ہو گئی ہے، اور اس کا یہاں سنا ہے کہ کوئی کبیر نام کا کوئی سنت سادھو ہے اور وہ میرے اس دکھ کا انت کر سکتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے ان میں کوئی شکتی ہے؟ سکندر لودھی نے بیر دیو سنگھ بگھیل کاشی نریش سے کہا، پوچھا. اب بیر دیو سنگھ بگھیل کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہا، پروردگار آپ ٹھیک ٹھکانا آ گئے، اب بادشاہ آپ ٹھیک ٹھکانا آ گئے، اب آپ کا دکھ کا سماپت ہونے کا سمے آ گیا، یعنی سماپت ہے سمجھو، آپ صحیح جگہ پر آ گئے. اور یہ وہی پرمیشور ہے، یہ وہی کبیر ہے جس نے اس دن وہ گائے مری ہوئی اور اس کا بچہ بھی جیوت کیا تھا. اوہو، وہ کو کبیر ہے، اور زیادہ اتساہت ہو گیا، بھئی اوشیہ بات بنے گی. میرے تو کو تو اس شیخ تکی نے بکا دیا کہ وہ جادو جنتر جانا تھا، اور کبھی ایسے مردے گو کٹی ہوئی جیوت ہوا کرتی ہے، وہ تو جادو کر کے دکھا دیا، کٹا ہوا دکھا دیا، پھر جوڑ دیا، ایسے ہو جاتا. اب یہ نکلی گرو ہوتے ہیں نا، یہ تو زیادہ سمپرک میں رہتے ہیں. تو راجہ نے سوچ لیا بھی ایسے جادو جادو بھی کر دیا ہوگا، چلو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن اب وہ بات پھر یاد آئی، وہ یہ وہی کبیر ہے، اکان جی وہی کبیر ہے. تو سکندر لودھی نے کہا کہ بیر سنگھ جلدی بلوا دے، میں بہت دکھی ہو رہا ہوں، جلدی بلوا دے اس کبیر کو. اب بیر دیو سنگھ بگھیل کہنے لگا، پربھو اے مالک، ویسے تو آپ کی اچھا جیسے آپ کہو گے ایسے ہی کر دے گا آپ کا داس، بلا دوں گا، लेकिन कहा करते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, और बुला भी लिया हमने, वो हमारे राज आदेश से आ भी गए और उन्होंने रजा नहीं बख्शी हृदय से, तो कोई लाभ नहीं होगा। दाता वैसे आपका जैसा आदेश हो मैं तैयार हूँ। तब सिकंदर लोधी कहने लगे, अबे वीर सिंह मत बुलाना, मैं चलूंगा। जब 800 किलोमीटर आ गया तो और आधा एक किलोमीटर और चलूंगा। उसी समय सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह बघेल और साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठकर चल पड़े। कहा कि वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि वो इस समय गुरुदेव, क्योंकि वीरदेव सिंह बघेल के वो गुरुदेव हो चुके थे। कौन? कबीर साहब। वीर सिंह ने कहा कि वो इस समय रामानंद जी, अपने गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम में विराजमान हुआ करते हैं, ये उनका वहां मिलने का समय है। और शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, वो कहने लगा मैं नहीं जाया करता इन काफिरों के आश्रमों में, तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा रेस्ट हाउस में। सिकंदर लोधी डरे उसने, क्योंकि वो सारे उन बोड़ी मुसलमान बोड़ी आत्माओं को काबू में रखा करें, मजहबी लोग हैं ये गुरु, क्योंकि वो बोड़ी आत्मा इनको भगवान मान के पीछे लगी रहती है और ये इनका सीधा नरक में ले जाने का टिकट बनाए रखे। वहां आकर बैठ गया और कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफरों के आश्रमों में। सिकंदर बोला जी आप विश्राम कर दो, मैं जाऊंगा, मैं दुखी हूँ, तू के दुखी है, तेरा दर्द होगा जो पता लगेगा तू जागा कि नहीं जागा। अब मन मन में ऐसा सिकंदर लोधी सोच के और चल पड़ा, कहा पीर जी आप विश्राम करो, क्योंकि इस पीर ने वो बोल गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे बोली आत्मा मुसलमानों को काबू में कर रखा उसने, राजा उस उड़ रहे, कहीं तेरा राज ना चला जा। सिकंदर लोधी वीर सिंह दोनों के दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के द्वार पर पहुंच गए, मुख्य द्वार पर। वीर सिंह को वो वहां के सेवक जानते थे कि काशी नरेश है और साहिब का शिष्य है, सब उन्होंने प्रणाम किया, सेवकों ने प्रणाम किया राजा से। नरेश ने पूछा, काशी नरेश ने पूछा कि परवरदिगार हैं यहाँ पे, साहिब कबीर यहाँ पर हैं? सेवक जो द्वार पे खड़ा था उसने बताया कि अभी आए नहीं है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आश्रम में विश्राम कर लेते हैं जब तक आएंगे। सेवक ने बताया कि आएंगे अवश्य, आ जाएं अब 10 मिनट में, आ जाएं घंटा लगे, पर आते अवश्य हैं, कभी नागा नहीं करते इस और ये समय आने का ही है उनका। इस उद्देश्य को लेकर सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। वीर सिंह ने कहा, क्योंकि वीर सिंह नियमों को जानता था, वीर सिंह ने कहा कि स्वामी जी से पूछो कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और साथ में मेरा भी नाम बताना, और आपके आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर साहब आवे और आपके दर्शनाभिलाषी हैं। सेवक ने जाके रामानंद जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी हैं, आपके दर्शन चाहते हैं और साथ में इंतजार करना चाहते हैं कबीर साहब के आने तक। इस बात को रामानंद जी ने कहा, इस बात को सुनकर कि मैं इन मुसलमानों का, मांस खाने वालों का, राक्षसों का दर्शन ही किया करता। अब देखो कितने उच्च विचारों के आदमी महापुरुष, 100 मेरे ख्याल 15-16 साल के हो चुकी थी उम्र उनकी, और अभी भी ये खचड़ा भरा रहता है, ये हिंदू है, ये बुरा है, ये मुसलमान है, ये बुरा, विद्वान पुरुष का हमें, और हिंदू क्या कम है जो मांस खाते हैं, लेकिन ये गुरु लोग हैं ना, ये स्वर्ण खावे, हिंदुओं के गुरु मांस और मुसलमानों को बुरा बतावे, और मुसलमान खूब बुराई करे और हिंदुओं को बुरा बतावे, ऐसे ये अनजान पड़े में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो रामानंद जी ने पहले, रामानंद जी तो किसी जाति वालों को नजदीक नहीं आने देता था, छोटी जाति वालों को, और ना ही नाम देता था, ना उपदेश देता था, ना भक्ति अधिकारी बनाता था। कबीर साहब ने उनका पहले भ्रम तोड़ा था कि गुरुदेव यहाँ पर कोई दो नहीं है, कोई जाति नहीं, हमारा एक जीव जाति है, मानव अपना धर्म है। और कबीर साहब ने जो सतलोक दिखाया, अपनी प्रभु समर्थता दिखाई, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अन्य जाति वालों को तो वो नफरत नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से नफरत अब भी करते थे कर रहे थे। और यदि जब तक हमारे अंदर द्वितीय भाव और राग द्वेष एक दूसरे को छोटा बड़ा हे समझते हैं, मन में खोट रहेगा, अवश्य रहेगा, वो प्रभु को पसंद नहीं। इसलिए रामानंद जी का ये खोट निकालना था, ये जो थोड़ी सी डायरी थी ना कमजोरी, ये भी निकालनी थी। और उधर से सिकंदर लोधी का को अपनी समर्थता का प्रमाण भी देना था कि यह पुण्य आत्मा हो सके, शरणों में आ जावे, और न जाने कितने जीवों को राजा तो और ज्यादा को परेशान मतलब प्यार कर सकता है, शरणों में ला सकता है। जब राजा ही लग जाएगा तो सभी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो अवश्य है सत्य वहां पर। तो इस भाव से कबीर साहब ने ये एक तीर्थ दो शिकार करने चाहे थे। तो सेवक ने आके बताया वीर सिंह बघेल को कि साहब ने मना कर दिया। वीर सिंह तो जानते थे, वीरदेव सिंह बघेल तो। सिकंदर ने पूछा क्या कहा, अब बताओ क्या कहा। हाँ बताओ बताओ कि स्वामी जी ने कहा कि मैं इन मांस खाने वालों का मुख नहीं देखा करता और यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह और एक छोटा सा महात्मा उसका ऐसा अनादर कर दे तो के कोई मन में बाकी नहीं रही, बहुत कोपित हुआ और निकाल ली तलवार और चला गया। जब अंदर ही कौन रोका उसने, मालिक जाकर के रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, गुस्से में जाकर उनकी गर्दन काट दी। दो टुकड़े हो गए और ऐसे गुस्से में वो कर तो दिया अनर्थ। बाद में ध्यान आया, सिकंदर लोधी कहने लगा वीर सिंह मैं पापी आत्मा हूं, आया था दुख निवारण कराने के लिए, ये पाप और मोल ले लिया, अब मुझे कबीर परमात्मा कबीर साहेब माफ नहीं करेंगे, मेरा रोग वो निवारण नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। वीर सिंह चल वापस, मैं तो भुगत के ही मरना होगा, अब मेरे दुख का अंत नहीं हो सकता। ऐसा सोचता हुआ कहता हुआ वापस आ गया, बाहर निकले आश्रम से। उसी समय देखा सामने कबीर परमेश्वर आ रहे हैं। वीर सिंह ने कहा प्रवर्दी हे राजन, ये गुरुदेव तो ये आगे परमात्मा ये आ रहे सामने, ये कबीर साहब है। और जो ही वो नजदीक आए कबीर साहब, वीर देव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया उसी मिट्टी में लेट के। अब अगर सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या न की होती तो सिकंदर लोधी में अकड़ रहती, वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं करता लेट के। अब उसने भयभीत इतना हो गया कि कहीं श्राप ना दे दे महापुरुष तुझे। ये सोच के डरते ने और कहीं तरह रोग निवारण ना हुए, डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। जो ही दोनों ने लेटकर पूरा साष्टांग प्रणाम होता है, दंडवत लेटकर प्रणाम किया कबीर परमेश्वर के चरणों में, उसी समय कबीर परमेश्वर ने दोनों के ऐसे सिर पे हाथ रखा और कहा ये दो दो नरेश आज इस दास के पास कैसे आना हो गया। जो ही हाथ से स्पर्श किया उस सिकंदर लोधी का जलन का रोग छू मंत्र हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, जैसे कभी दर्द रहा ही ना हो। और चरणों में पड़कर और ज्यादा श्रद्धा होगी, ऐसे लेटे लेटे ने दोनों चरण पकड़े रहा और रोता रहा या परवरदिगार मैं पापी आत्मा हूँ, आपने मेरा उद्धार कर दिया मेरे मालिक, मुझे बख्श दो दाता, मुझे बख्श दो परवरदिगार। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, उठो राजन, बख्श दिया। सिकंदर लोधी को मालूम था कि ये फिर श्राप दे देंगे, इनको पता लगेगा कि उनके गुरुजी की हत्या होगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि दाता मुझे माफ कर दो, मैं पापी आत्मा हूँ। सिकंदर कबीर साहब ने कहा कर दिया माफ, चिंता ना करें, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने जो क्योंकि वो जान ही जान थे अगे होना, ये तो बहुत दुखी हो रहा, इसने गलती तो कर दी है, खड़ा हो गया, अब बता क्या किया तूने। कबीर साहब ने पूछा, सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार वो सारी कथा बताई, हम आपके दर्शनार्थ आए थे, आपके पूज्य गुरुदेव ने हमारा अनादर किया और इस पाप आत्मा ने मैं इस नीच आत्मा ने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी, छो छो मैं गुस्से गुस्से मालिक उन्हें माफ कर दो। कबीर साहब बोले भाई कोई बात ना, ये तो अपने अपने संस्कार थे, क्या मेरा गुरुदेव की हत्या आपके हाथ से लिखी हो, लिखी होगी प्रभु ने, वो हो गया सो हो गया, इसमें क्या अब क्या बनना है, चिंता ना करे, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे करना, अंतिम संस्कार करवा जा, नहीं तो तुझे दुनिया थूकेगी। यूं कहकर कबीर साहब आश्रम की तरफ चल पड़े और सिकंदर लोदी वीरदेव सिंह बघेल दोनों पीछे पीछे चल पड़े। उस समय सिकंदर लोदी कहने लगा वीरदेव सिंह, भाई आज देखे भगवान, सुना करते अल्लाह है, अल्लाह ऐसे सुख देता है पर हमने आज तक ऐसा सुख नहीं मिला था, ऐसा प्रमाण नहीं मिला था। और दूसरी बात कि जब मैंने ये कहा कि आपके गुरुदेव का मैंने की मैंने हत्या कर दी, इनके मुख पर सिकन भी नहीं आई, ना त्योड़ी चढ़ी ना गुस्सा होया, ओए होए समुद्र से भी ज्यादा सहनशील ये साधु लक्षण मैं आज तक नहीं देखे वीर सिंह। अब वीर सिंह मन मन में कहता कि ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है, क्या देखियो क्या होगा। अंदर चले गए और वीरदेव सिंह बघेल भी और साथ में बिजली वो सिकंदर लोदी भी। अंदर जाकर कबीर साहब जब अंदर प्रवेश किया तो सेवक भागे आए, कहा कबीर साहब गुरुदेव की हत्या कर दी सिकंदर लोधी ने। कबीर साहब ने कहा नादाना, संत कभी मरते हैं क्या, ये तो पांच तत्व का पुतला है, ये तो छोड़ के जाना ही था, व्रत शरीर हो रहा है, लीला करनी थी, छोड़ गया अपना, क्यों चिंता करते हो। इतने में सिकंदर लोदी भी साथ साथ आ गया, उसको देखकर सब घबरा गए, यू तो फिर आ गया और सब चुप करके खड़े हो गए, कति खामोश जैसे सन्नाटा छा गया, हाँ कि वो फिर वापस आ गया। अब कबीर साहब के धड़ पे और शीश पे अलग से चादर डाली हुई थी दो टुकड़ों पे। कबीर साहब ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के मृत शरीर के, उस कतल शरीर के, और कहा परवरदिगार उठो। फिर खड़े होकर उनके चरणों की चादर छुई और ऐसे मत्था टेका, मालिक एक बार उठियो, आपके दर्शनार्थ दिल्ली से बादशाह आए हैं, काशी नरेश आए हैं, संध्या आरती का समय हो गया, परवरदिगार एक बार उठना। यूं कहते दूसरी बार जब मालिक ने कहा, वो सिर उठ गए, वह गर्दन उठकर धड़ पर जुड़ गए और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरु देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। इस कमाल को देख के, इस अनहोनी को देख के सिकंदर लोदी की आंखों में पानी चूए। उसमें रामानंद जी जब उठे, वो जीवित हो गए, उन्होंने देखा कि उनका कत्ल हुआ है, तो याद रहा सामने सिकंदर लोदी खड़ा, और उनके शरीर से जो गर्दन कटी हुई थी उसमें से आधा दूध आधे हिस्से से खून निकल रहा था, वह बहा पड़ा था। इसका कारण जब कबीर साहब से रामानंद जी ने पूछा, कबीर साहब ने कहा परवरदिगार आप जानी जान हो, हे दाता पहले आप अन्य जाति वालों को भी हे दृष्टि से देखा करते थे, अब आपने वो निर्मलता आप में आ गई, अब दूसरी जाति वालों को बुरा नहीं मानते, सबको उपदेश देते हो, सबको सीने से लगाते हो, प्यार देते हो, इसलिए आपका आधा शरीर पवित्र हो गया, उसमें से दूध निकला, अभी आप मुसलमानों को बुरा मानते हो, इनको नीच मानते हो, हे मानते हो, दाता आप तो महान आत्मा हो और ये सभी बच्चे आप ही के तो हैं, महानता इसी में होती है जो सबको एक जाने, और हम दो नहीं हैं, हम एक प्रभु की संतान हैं, हम तो दो बनकर दुखी हो रहे हैं, और दाता ये आप ही के बच्चे हैं, इसलिए आप अभी अधूरे, अभी पूरे स्वच्छ नहीं हुए, प्रभु पाने योग्य नहीं बन पाए, और जिसने प्रभु पाना है वो कौन अटक करे और कौन नखरे करे, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं देखता, उसने प्रभु ही पाना होता। उसी समय कसम खाई कि आज के बाद मैं अपने प्यारे मुसलमानों को अपने प्यारे दिल का टुकड़ा समझूंगा जैसे हिंदुओं को समझता हूँ। उसी समय सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया स्वामी रामानंद जी ने और कहा बेटा मेरे तो गलती होगी, माफ कर दे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, क्योंकि हमारा रंग युगों युगों का चढ़ा हुआ है। और सिकंदर लोधी ने कहा दाता मैं नीच आत्मा था, मैंने आप पर हाथ उठा दिया, इसी पुण्यात्मा पे, मतलब कर्महीन था, बुद्धिहीन था, दुख का सताया हुआ था, मालिक मुझे माफ कर दो मालिक। तब वो रामानंद जी कहते हैं ये सारी लीला कबीर परमेश्वर की है, ये कुल दनी है, सिकंदर सतकर मान लेना। इतना खेल देख के उस परमेश्वर का सिकंदर लोदी ने कहा प्रभु एक बार दिल्ली चलो दास के साथ। कबीर साहब ने कहा कि दिल्ली जब चलूंगा जब तू मेरा नाम ले लेगा, मेरा शिष्य होगा और भक्ति सत करेगा, जीवन सा नहीं करेगा, जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान नहीं बनाएगा। इनको ये ज्ञान स्वतंत्र मार्ग है, अपना ज्ञान देकर के हम अपना बना सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। उसने सिकंदर लोदी ने कहा दाता जो आप कहोगे वैसे करूंगा। कहा कि मांस नहीं खाएगा सिकंदर लोदी से कहा, कबीर साहब ने कहा कि, और सिकंदर लोदी बोला नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा लेकिन इन अन्य इन पीर प्यारों के मेरे बस की नहीं दाता, ये तो अपने हिसाब से चलेंगे, मैं आपका दास बिल्कुल मांस नहीं खाऊंगा और जहां तक हो सकेगी जीव हिंसा तो बंद करवा दूंगा और मैं आपका उपदेशी हो जाऊंगा, मुझे नाम दे दो। कबीर साहब ने कहा मुसलमान बन जाओ, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूना नहीं, आन उपासना नहीं करनी, नमाज करना, लेकिन रोजे करने से भी कोई लाभ नहीं है, हाँ ये मंत्र जाप करना। सिकंदर लोदी ने स्वीकार किया और अगले दिन दो चार दिन वहां रुक के फिर दिल्ली को प्रस्थान किया। कबीर साहब भी साथ ले लिए, अपने ही अंबारी में, अपने हाथी में वाले उस अंबारी में बैठा लिया मालिक को और चल पड़े। अब इस बात की जलन शेख तकी का होगी, जो पहले वाला गुरुजी था, उसने सोचा है भी तेरी प्रभुता गई, ये तो कबीर की प्रभुता हो जाएगी, ये तो भाई बात बिगड़गी, कहीं ऐसा ना हो तेरी रोजी रोटी जावे। अब वो हो गया इस बात की ताक में कि कैसे कबीर को नीचा दिखाऊं और राजा की दृष्टि से गिरा दूं ताकि तेरी प्रभुता बनी रहे झूठी साची करके। ऐसी सकीम तगड़म पगड़म करता हुआ आ रहा है। चलते चलते एक दरिया के ऊपर रात्रि के समय सभी काफिले ने पड़ाव किया कि यहाँ रात रोटी रुकेंगे, शाम का खाना बनाएंगे, पानी है, सुबह नहा धोकर खाना खा के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऐसा सोचकर वहां पर सभी पड़ाव लगा दिया। अब सुबह का समय था, शेख तकी रोजाना राजा के पास सुबह सुबह आया करता था, उस दिन नहीं आया। तो राजा ने सोचा अब हम चल लेते हैं, पीर से पूछे क्या बात है, जो कैसे मुंह चढ़ाए हुए है। पूछा के हे शेख तकी, हे गुरुदेव क्या बात है, आप मायूस क्यों हो? कि मायूस क्यों नहीं हो, तुझे मेरी क्या आवश्यकता है, तूने तो गुरु मिल गया ना, वो पाखंडी ढोंगी। अब सिकंदर लोदी कहने लगा ऐसा नहीं कहा करते संतों को, कहूं क्यों ना, तुझे मेरी क्या आवश्यकता है, उसमें क्या देखा तूने ऐसा। कब कबीर साहब और सिकंदर लोदी कहने लगे पर पीर जी मेरे जलन का रोग था और हाथ लानते इनके साथ सप्रस मात्र से मैं स्वस्थ हुआ और मैंने इनके गुरुदेव की गर्दन काट दी थी रामानंद की और मेरे सामने जीवित किए, ये तो परमेश्वर आई है। अब शेख तक ही कहने लगा अगर ये अल्लाह है ना तो मानता है तो मैं जब मानू जब मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे और नहीं तो जाकर के मैं कह दूंगा सब मुसलमानों को कि राजा काफिर हो गया, अवज्ञाकारी हो गया है, ये हिंदू धर्म में जा चुका है और तेरा वहां राज नहीं रहेगा। अब राजा डर गया, अगली तो पक्का उस्ताद है, जाते काम करेगा, क्योंकि सब बड़ी आत्मा इन गुरुओं के पीछे बंध रही है, चाहे अनर्थ कराओ और चाहे बुला करवाओ किसी का। तो फिर हाथ जोड़े दाता आप कैसे मानोगे कि मैं जब मानूंगा कि मेरे सामने जीवित कर दे किसी मुर्दे को और फिर कह दूंगा कि अल्लाह आया है फिर मैं भी मान लूंगा। अब सिकंदर लोदी मायूस होकर कबीर साहब के पास बैठ के जाके जानी जान अंतरयामी कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजन क्या बात है, बहुत मायूस नजर आ रहे हो, क्या कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या तूने? अक नहीं दाता, आपके रहते राजकाज में क्या हो सके, लेकिन मालिक मेरे दुख का कारण बताओ, हकाम बताओ, कोई बात नहीं कि ये जो मेरे गुरु जी है ना पुराने, ये पीर जी, ये मेरे शर्म दर्द है, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो जाते ही सारे मुसलमानों को ये ऐसा बहकाएगा कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, और दाता ये ऐसे ऐसे जिद लगाई हुई है, ये कहता है कि तू काफिर हो गया हिंदू हो गया मैं ऐसे बताऊंगा ऐसे कहूंगा, और मालिक अब मेरा राज गया,